वो दूसरों के कहने में उपद्रव बढ़ा और इनकी लीला बढ़ी और मैयाओं का आनंद बढ़ा और भय बढ़ा दोनों। अब ये जब तक घर में तब तक को संभाल रखना बड़ा सहज था, अब ये इधर उधर जब जाने लगे तो संभाल करना बड़ा मुश्किल होगा। यशोदा रोहिणी ने कहा तमाम धात्रियों से कि भाई सावधान रहना, बच्चे चपल बहुत हैं, बड़े चंचल हैं, बड़े उद्यमी हैं, किसी की बात मानते नहीं। मैया देख देख के तो आनंदित हों, उनकी लीलाओं को देखें पर मन में डरें। और फिर उन्होंने गोपियों से भी कह दिया आस पास पड़ोसियों से कि देखो भाई ये बच्चे जो हैं ये उद्यमी बहुत हैं, तुम लोग भी आ जाया करो, ख्याल रखा कर। तो वो तो चाहती थी किसी प्रकार से मैया आने को कह दे, तब तो फिर बात ही क्या है। तो गोपियां जाने लगी, वो तो अब संभाल क्या रखती, वो तो बाल विहार देखने आती। इस प्रकार से वो घर के कामकाज को भूल करके सब के सब उस आनंद सिंधु में लहराने लगी। तो ये जब आंगन में खेलते कूदते तब क्या हुआ कि ये गायें जो थी और गोवत्स जो वहां पर थे, ये सब भी तो सब प्रेमीगण ही थे, कोई पशु थोड़े ही थे ये। तो ये लोग अब नंद बाबा के महल के अंदर आंगन में आने लगे लीला देखने के लिए। आकर के वहीं खड़े हो जाए सब, तो ग्वाले बिचारे बड़ी चेष्टा करें बाहर निकालने की, पर ये निकले ही नहीं बाहर, खड़े रहे आंगन में। और जब बलपूर्वक इनको निकालना चाहें तो वहां सो जाएंगे, गायें सो जाएं, बछड़े सो जाएं, उठे नहीं वहां से। तो कन्हैया बोले बोले रहने दो, बाबू जी बोले बोले इनको रहने दो, इनके साथ खेलेंगे हम, मत निकालो इनको बाहर। तो यूं बस वो बछड़े और गायें भी अंदर, आंगन बहुत भारी आंगन था नंद बाबा का, उसमें आने लगे। अब ये क्या करते, इनको डर तो था नहीं, भगवान के नाते की बात छोड़ दे, बच्चे रहे तो डर तो इनके मन में था नहीं। कुछ पहले तो ये बछड़ों के पास जाने लगे, बछड़ों के पास जा करके और देखा इसके पीछे लंबी लंबी क्या है। अब पूछ तो जानते नहीं क्या चीज होती है, उसको लेकर हाथ से पर हिलावे तो वो बछड़े के जा गुदगुदी हो, तो ये देखें कि ये बछड़ा प्रसन्न हो रहा है, जरा जोर से खींचें, जोर से खींचें कि बछड़ा खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए तो उसको और भी जोर से पकड़ लें तब और खींचें तो बछड़ा दौड़े तब ये उसके पीछे पीछे घिसटते हुए चले जाएं। तो मैया कह रहे शाबाश, बड़ा बहादुर, बड़े बहादुर हो तुम लोग, देखो बड़े बहादुर, शाबाशी दे मैया और सब का सारी दे और इनकी मौज और बढ़े। तो इस प्रकार से फिर ये जब देखेंगे बहुत दूर जा रहा है बछवार, कहेंगे हाथ से पूंछ छूट गई तो वात्सल्य भावना मैया के मन में, तो पीछे से दौड़ करके जाए और दौड़ करके छुड़ा के इस तरह से गोद ले लें कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हारे नहीं, तुम्हारे पूछ हमने छुड़ाई है, बछड़ा ही हार गया। इस प्रकार से उनको ले आए समझा बुझा करके। अब ये और चंचल कुछ दिनों के बाद हो गए, तो अब ये बाहर आके खेलने लगे, नाच करने लगे, बड़ा सुंदर ये नाच करने लगे। तो अब मैयाओं के मन में आया कि नाच देखें, और कहा थोड़े थोड़े गाया करो। तो इनका नाचना गाना शुरू हुआ, बड़ा सुंदर भाव है, ये नाचने लगे और गाने लगे दोनों कान इनका। इनका गाना क्या है, वो अस्फुट स्वर है, ठीक ठीक गाना तो इनको आता नहीं, पर इनका गाना जो है ये तो गाना नावित क्या है, इन्हीं का गाना तो सब जगह गाया जाता है। तो इस प्रकार से गाने लगे, तो मैया सब इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर के कहें आज तो गाना सुनाओ हमको, जरा नाच दिखाओ। तो ये कहें नाना नाच नहीं दिखाएंगे। तो तमाम गोपियां इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर के कहें माखन हाथ में ले लो, माखन हाथ में लेकर के दूर खड़ी हो जाए, कहें देखो नाचोगे तो माखन मिलेगा। अब नाचने के मन में आया तो भी माखन मिलेगा तो क्या, अरे थोड़ा सा नाच लें, तो ये नाचने लगते और वो इनको नचाने लगती। बड़ा सुंदर सुंदर इनका भाव इस प्रकार से ये सुख देने लगे नाचते हुए। इसके बाद ये क्या करते, अब तो सब कुछ करने लगे ना ये, तो बाहर भाग जाते। अब ये बाहर बड़ी बड़ी गायें, बड़े बड़े बैल, बड़ी बड़ी भैंसे, ये सब तो जब जब पास जाते तो वो अपनी नार नीचे कर देती, जरा हाथ लगा दें, जरा हाथ फेर दें, बड़ा उनका भाव। तो ये आगे बढ़ जाते, बढ़ के जो उसका सिर नीचा रहता ना, तो दोनों सींग पकड़ ले, सींग पकड़ के जो हिलाते, सींग पकड़ के जो हिलाते, कभी पूछ पकड़ के लेते, कभी ऊपर चढ़ने लगते, बैठी गाय ऊपर बैठ गए और यूं करें बोले उठ। तो अब मैया रोहिणी और यशोदा देख देख करके डर जाए कि कहीं पर किसी सींग की लग गई तो बड़ा अर्थ हो जाएगा, और कहीं कहीं गैया और भैंस लेकर के भागी और कहीं गिर पड़े तो बड़ी मुश्किल होगी। तो मैया कहे छोड़ 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 दे, भागे दौड़े, पर ये कहे नहीं नहीं हमके हमें तो बड़ा मजा आता, इसी पर रहेंगे यहीं। तो कहीं उनका गला पकड़ लें, कहीं कुछ कर लें। अब मैया फिर उनको किसी प्रकार से हटावे, तो बार बार ऐसा करें, बोले बहुत अब तो निगाह रखनी पड़ती। एक दिन आग जल रही थी, आग जल रही थी तो इन्होंने देखा कि आग की लपट उठ रही है, देखो ये आग नाच रही है, तो बोले हम भी नाचें। तो आग के पास जाकर के आग की तरह से नाचने लगे, यूं नाचने लगे, बोले इसको जरा हाथ पकड़ के नाचे ना, हाथ पकड़ के नाचे। तो अग्नि में हाथ डालने लगे, अग्नि की जो शिखाएं थी उस शिखाओं को पकड़ने के लिए मानो चेष्टा की इन्होंने, हाथ बढ़ाया तो मैया सारी डर गई, अरे राम 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 क्या होगा। दूर से ही देखा बाल साहब पर, इनका कहा ये बच्चे तो आग जल जाएंगे। अब आग क्या थी, आग तो इन्हीं की शक्ति से आग बनी हुई है ना, तो जब यूं हाथ बढ़ाओ तो आग की लपट यूं हो जाए, यूं बाबा यूं हो जाए, मानो आग भी इनके साथ नृत्य करने लगी, अग्नि की शिखाएं नाचने लगी। माताएं दौड़ी दौड़ करके उठाया, उठा करके बोले बड़े मूर्ख तुम लोग हो, देखो आग से जल जाओगे। तो ये बोले ना भैया ना, ये तो नाच रही थी, देखो हमारे साथ कैसी बढ़िया। इस प्रकार आग में हाथ डाल दी तो कुत्ता घर में आ घुसे, तो रामकृष्ण दोनों भाग करके उस कुत्ते के पास पहुंच जाए। और कुत्ता जब बहुत प्यार से किसी को देखते पाता तो पूंछ हिलाता है, तो कुत्ता जब पूंछ हिलाने लगे और सिर नीचा कर ले तब ये उसके गले को पकड़ ले और दहने हाथ से बाएं हाथ को गले में डाल ले और दहने हाथ से उसकी जीभ को पकड़ ले। कुत्ते की जीभ वो लकड़ा जीभ को जीभ पकड़ खींचने लगे, कभी पूंछ खींचे और कभी कुत्ते के ऊपर ही जा बैठे। मैया देखती है कि भैया कुत्ते को घर के पालतू हैं, इनसे कोई डर नहीं, तो मैया देख देख करके हंसे। अब बंदरों का तो पूर्व का इनका सहयोग रहा बड़ा भारी, तो बंदर लोग जब आए तब तो इनको बड़ा अच्छा लगे, बंदरों को देख देख जब बंदर नाचे तो ये भी नाचने लगे, उनके पास जाए और बंदर भागे नहीं इनसे। तो ये क्या करें कि दोनों हाथ से उनके दोनों हाथ पकड़ के बंदरों के उनको घर की तरफ खींच करके बुलाओ, खेलेंगे हम साथ, बंदरों को खींच लाने। तो ये सब देख करके नंदरानी अब डर जाए कि भाई ये बंदर जो हैं ये तो कहीं काट लें, कुत्ते तो घर के पालतू हैं लेकिन ये बंदर तो सब ऐसे ही हैं, कहीं काट बात ले सर्वनाश हो जाए तो बड़ा तो बड़ी मुश्किल। समझा बुझा कैसे ही दूध का नाम लेकर के माखन का नाम लेकर के लावे लौटा करके। एक दिन देखा एक काल नाग निकला, काला नाग निकला एक, तो इन्होंने देखा कि ये क्या चीज निकली, ये देखो चल रही है ऐसे काली काली चीज चमकीली, ये क्या है। तो दौड़े, दौड़ करके पीछे से पहुंचे तो उसकी पूंछ पकड़ ली, सांप की पूंछ पकड़ ली। अब वो सांप का जब स्पर्श हुआ तो उसको बड़ा आनंद मिला, तो वो सर्प जो है उसने अपना फन फैला दिया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने बहने या बाया से तो पूछ रहे पकड़े, और बैनाथ उसके सिर पर रख करके फनों पर थप थपाने लगे, और फिर वो कुछ बोला नहीं तो उठा करके उसको गले में माला बना के पहन लिया। अब यशोदा मैया ऐसी मैया डरी राम राम नारायण का वो स्मरण करने लगी, हे नारायण अब तो आप बचाओ, इसने तो साथ ही गले में डाल लिया, बड़ा चंचल है भाई मानता नहीं। तो भागी भागी, दूर से देखा भागी बिचारी, अब कवरी जो है बेणी वो खुल गई विगलित हो गई और गिर पड़ी एक जगह, तो रस्ते में धूल लग गई तमाम। अब वो देखे कहीं काश न जाए हम पहुंचे इतने में, तो भागी दौड़ी दौड़ करके, अरे बड़े दुष्ट तुम हो गए हो, बड़े चंचल हो, किसी प्रकार से उठा उठू करके उनको और ले करके आई। एक दिन के बाद थोड़ी वो तो रोज सांप निकले, रोज इनका यही हाल। अब एक दिन के बाद तो इन्होंने क्या किया, बड़े चंचल रहे तो बगल में था बगीचा, और बगीचे में बड़े बड़े कुएं रहे पानी सींचने के लिए, वहां पर रस्सी पड़ी रहती और घड़े पड़े रहते। तो शायद दोनों भाई पहुंचे कुएं पर, कुएं पर पहुंचे तो वो रस्सी लगी हुई थी ही कलसी के, तो उस कलसे को कुएं में डाल दिया तो भर गया पानी से, तब उनको खींचने लगे। अब खींचा जाए नहीं, हाथों में जोर नहीं, भरा कलसा खींचा जाए कैसे। तो अब वो नीचे को खींचे इनको, तो अब डर लगा, रे भैया भैया गिरे हम तो कुएं में गए, ये कलसा हम तो खींच रहा है। तो मैया ने देखा, रे कहां से बोल रहे हैं ये, अरे हाय हाय नमाल में तो कुएं पर चले गए, कहीं बच्चा रहे गिर पड़े तो दौड़ी मैया, हाय 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 तुमने क्या किया, हे भगवान नारायण तुम बचाओ, हमारे पहुंचने में देर होगी, ये कहीं गिर न पड़े, जरा सी देर हुई थी तो गिरे। इस प्रकार से ये सब कुछ करें कराऊ। कभी कभी उन्होंने एक दिन मयूर आया, मोर आया, मोर तो रोज ही आते, इनको मोर बड़ा प्रिय, तो मोर अपना मोर ने देखा इनको, तो वो बस अपनी पूंछ फैला करके लगा नाचने। तो इनको मोरों से, मोर पांच से बड़ा अनुराग, ये भी बहुत राजी हो गए। तो उनका उनकी उसकी सुंदर पूंछ, रंग रंग रंगीली पूंछ देखी, तो बड़ा सुंदर वो नील कंठ देखा उसको, हरित कंठ नील, तो हाथ उसको फैलाने, मोर पर हाथ फेरने लगे और कभी उसकी पूंछ को पकड़ के खींचने लगे। इधर उधर जब मोर भागे तो उसके पीछे पीछे भागे, इधर भागे इधर भागे इधर भागे, और दोनों भाई कभी वो आगे आ जाए कभी वो पीछे आ जाए, मोर का रस्सी रोक ले। तो अब मैया ने देखा कि ये मोर कहीं चांच से मार न दे, बड़ी मुश्किल, कहीं लग जाएगी तो क्या होगा। तो मैया फिर दौड़ी दौड़ी तो बोले बोले ठहर जाओ, देखो कैसा खेल रहा है, अंगली दिखा करके बतावे। मैया बोली, तुम लोग बड़े शरारती हो गए, बड़ो जरा सी बात नहीं मानते, तुमको मोर मंगवा देंगे हम बड़े बड़े और दूसरे पक्षी, और पिंजरों में रख देंगे, तुम खेला करना उनके साथ। बोले नहीं, पिंजरा उंजरा नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। एक दिन की बात, तो क्या किया कि ये गायों के लिए एक बाड़ा रहा, कई बाड़े थे, तो बाड़े में कांटों की बाड़ लगी, तो ये खेलते खेलते गए। अब बोलो दरवाजा कौन देखे, इनको कौन से मार्ग से जाना है, इनके लिए सभी मार्ग मार्ग हैं। तो इन्होंने देखा कि बाड़े के अंदर जाना है, तो जाएं कैसे, तो कांटों की बाड़ में जहां जरा सा छेद दिखा دل یہی رستہ ہے. تو وہ کانٹوں میں پہلے تو پیر گھسا دیے اور پھر سر گھسا دیا. اب بدن رہ گیا اس طرح, اب دونوں طرف کانٹے گڑے, اب وہ ہل نہ سکے تو اب بڑی نہ تو پیچھے ہٹ سکے نہ آگے جا سکے, تب رونے لگے میاں میاں دیکھو دیکھو میاں کیا ہو گیا, یہ ان کانٹوں نے پکڑ لیا ہم کو تو چھڑا ہوا کر کے. تو سر پیٹا دونوں نے, ارے رام رام یہ تو بڑے ادھمی مانتے نہیں, اتنا کومل انگ انکار, کہیں کانٹے بند گئے تو بڑی مشکل ہوگی. کسی پرکار دوڑی, کانٹوں کو ہٹایا, ہٹا کر کے ان کو باہر نکالا. اس پرکار سے وہ شرنگنی دشٹ سجل دل کنڈ کے کیڑا کرا بد چلو سست نشم دیہان کرتوشیکا پراپ چل منسو نوستھان. اس پرکار سے یہ کنہیا اور داؤ جی بڑے چنچل بڑے کھلاڑی, کہیں ہرنوں کے پیچھے, کہیں گایوں کے پیچھے, کہیں سینگ والے پشوؤں کے پیچھے, کہیں جدکتی ہوئی آگ میں یوں کھیلنے لگتے, کبھی کتے کے پاس, کبھی بندروں کے پاس, کبھی کسی کنویں میں, کسی گڈھے میں, کبھی موروں کے پاس, کبھی کانٹوں میں یہ جاتے آتے. بھیا بہت برستی ان کی ایک دور چلتی ہے. اب گھر کا کام زندہ ہی میاں سے بند ہو گیا. اب گھر کا کام کب کریں, دن بھر کے چنتا کی جب تک یہ سو نہ جائیں تب تک نہ معلوم یہ کیا کر بیٹھے. پتا نہیں تو دونوں میاں اور تمام بھاتریاں سب پریشان, پریشانی کے ساتھ ساتھ آنند جب ان کو کھیلتے دیکھیں اور ہنستے دیکھیں تو بڑا آنند. تو بچوں کو ایک طرف سے بچانے کی چنتا اور ایک طرف ان کے کھیلنے کا آنند, اس پرکار سے میا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس لوک میں ایک شبد آیا ہے دوج. دوج کا ایک ارتھ برہمن بھی ہوتا ہے. تو اس وشے میں ایک کتھا بڑی سندر پرچلت ہے, برہمنوں کے ساتھ بھی کھیلتے, برہمنوں کے ساتھ بھی کھیلتے. تو اس کی ایک کتھا ہے, ایک برہمن رہے, ان کا نام تھا کنو, کنو رہے. تو کوئی کوئی تو کہتے ہیں کہ جو کنو رہے یہ اس کے جشودا میا کے پیر کے برہمن تھے, اور کوئی کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی رشی تھے. تو یہ کنو جو تھے, یہ ان کی کتھا آتی ہے کہ یہ بچپن سے ہی بڑے نارائن پرائن تھے. یہ نارائن کی سیوا کرتے اور اب ہوتے ہوتے یہ بوڑھے ہو گئے. ایکانت سیوی تھے, بھگوان کا سمرن کرتے بھجن کرتے, اور بھگوان کی اکائک ان کے پاس ہی وگرہ تھا, اس کو ارپن کرتے روز, ارپن کر کے نیوید اس کا لیتے پرساد پاتے, اور بڑے پریمی تھے. تو کنو جو ہیں کہیں جاتے آتے نہیں. نند بابا کے یہاں یہ بیچ بیچ میں جایا کرتے, اور ان لوگوں کے دونوں کی ہی, نند بابا کی یشودا میا کے بڑی شردھا تھی کنو کے پرتی. تو وہ کنو کو اپنے ہردے کی بات بتایا بھی کرتے, پوچھا بھی کرتے, اور کنو کی آوشیکتا کو پورن بھی کیا کرتے. تو کچھ نہ کچھ مانگتے مانگتے نہیں. اب کی یہ پانچ ورش ہو گئے, آئے نہیں تھے نند بابا کے گھر, دھیان وان میں رہے وشیش بھجن میں. ان کو معلوم نہیں تھا کہ کنہیا کا پراگٹ ہوا ہے, ان کے نند بابا کے بچہ ہوا, یہ پتا نہیں تھا. یہ دوادشی کا دن تھا اور یہ اپنے اشٹ دیو کی پوجا کے لیے پھول چننے کو اور کند مول لینے کو جمنا کے تٹ پر آئے تھے, گوکل کے گھاٹ پر آئے نکلے. تو کچھ گوالیاں وہاں پر پانی بھرنے آئی ہوئی تھیں اور وہ بال لیلا کا ورنن کر رہی تھی. وہاں تو ایک ہی بات, وہ بال لیلا کا ورنن کر رہی تھی. تو اب بھگوان کی پریرنا, کرم کسی کی بات نہیں سنتے تھے دوسرے کسی, اور ان کا من نہیں جاتا تھا, پر یہ بھگوان کی بات ادھر ان کے کان چلے گئے, کان چلے گئے, सुनी इन्होंने, वो ज्ञान से नहीं सुनते थे, ये थी भगवत चर्चा। तो उधर जब कान गए तो उनको अच्छी लगी बात, तो ये उन रूपांगनाओं के पास आए और आकर के बोले कि माता तुम किसकी बात कर रही हो है? तो गोपियां प्रेम में गदगद बोली है, अरे तुमको मालूम नहीं पुत्र भयोई नंद महर के बड़ी बेस बड़ भा आ गए, तुमको मालूम नहीं पंडित जी महाराज ये हमारे नंद बाबा के लाला हुआ है, उसी की बात करते हैं। तो कहा जरा सुनाओ हमको। तो नंद बाबा के लाला की बात वो सुनाने लगी। अब ये तो समाधिस्थ हो, सुनते सुनते यमुना के तीर पर ही ब्राह्मण देवता समाधिस्थ हो गए, सब भूल गए, और वो नंद बाबा के आंगन की लाला की मूर्ति इनके सामने समाधि में प्रकट हो गई। अब ये अब कौन फूल सुनाए और कौन ले जाए, वहीं झोली पे रख दी, और मानो जैसे कोई मशीन ले जा रही हो इस प्रकार से यंत्र चालित से ये ब्रजपुर की ओर चल पड़े। अब जहां इन्होंने ब्रज की उस नंदगांव की सीमा में प्रवेश किया कि इनको तो दूसरी ही बात की अनुभूति होने लगी, ये मानो कहां एक अनिर्वचनीय किसी ऐसे देश में आ गए। आज ये देश बदल गया था ना, अब तक तो वृंदावन दूसरा था, गोकुल दूसरा था, तो श्री कृष्ण के साथ तो दिव्य वृंदावन दिव्य गोकुल वहां आ गया। तो ये वहां के तमाम चीजों को देखते हुए और मन में मुदित होते हुए आए। आकर के जब नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे तो आने वाले हमेशा के थे, तो पहले बार ने पहचान लिया और चरणों में गिर उसने कहा कि महाराज ये ब्रजेश्वर तो अंदर हैं और आप अंदर पधारिए। तो अंदर ले गए। अब ब्रजेश्वर आजकल अंदर ज्यादा रहने लगे, पहले तो बाहर दरबार में बैठा करते, आजकल तो अंदर ही अंदर रहते हैं अधिकतर। तो जब देखा कि पंडित जी आ रहे हैं हमेशा के आने वाले बहुत दिनों बाद, तो बाबा उठ खड़े हुए, यशोदा मैया उठी और बड़े उमंग से उनके चरणों में प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया, ऊंचे आसन पर बैठाया, मधुपर्क दिया, अर्घ्य दिया और बजरानी के तो एक ही बात आशीर्वाद देना है। तो पंडित जी आए तो दौड़ी गई लल्ला को उठा के लाई लाला को, वो खेल रहे थे, बोले इतना जल्दी चल पहले पंडित जी आए हैं, प्रणाम कर चल के। तो खेल से छुड़ा करके वो ले आई और अपने आंचल से धूल धूल भरी थी मुख पर, तो नीलमणि के मुख को पहुंचा, अलकावली को जरा ठीक किया, सुधार दिया और ला करके जल्दी से ब्राह्मण देवता के चरणों पर डाल। ब्राह्मण को ऐसा लगा कि कोई सभी देख रहा हूं, अरे जिसका ध्यान करता था ये तो वही दिख रहा है, ध्यान में जो मूर्ति में देखा करता था वो प्रत्यक्ष इनमें दिखने लगी। तो ब्राह्मण चकित से हो गए, क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से हो संभाला। बूढ़े ब्राह्मण देखा मन में किए क्या कहेंगे नंद बाबा बूढ़े की, पंडित जी महाराज कुछ भांग वांग पीकर के आ गए, क्या बात है। थोड़ी देर के बाद प्रकृत होकर के बोले पंडित जी महाराज के, नंद राजा हमने सुना कि तुम्हारे पुत्र हो गया, नारायण ने बड़ी कृपा की, तो उसको देखने आए हैं और आशीर्वाद देने आए हैं। नंद बाबा प्रसन्न हो गए आशीर्वाद देने, पंडित जी स्वयं पधारे, तो वृंदावन बजरानी के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और भगवान तो खिलखिलाकर हंस पड़े, आशीर्वाद देने आया। मानो श्री कृष्ण हंस करके कहने लगे दूसरी बात करे, देखो ये जो मेरी हंसी है ना इसमें लीन कर दो अपने को, यही तो स्थल है। भक्त लोग जो हैं वो काहे में लीन होते हैं, भगवान के मधुर हास्य में लीन होते हैं, उनका जीवन मधुर हास्यमय बन जाता है। जिस भक्त का जीवन मधुर हास्यमय नहीं बन गया, जिसका जीवन निरंतर नहीं हंसने लगा, वो भक्त नहीं है।
तो कहा बस यही तो सर्वोत्तम स्तर है विलीन होने का, ये मधुर हास्य। तो बस तुम इसी में आ जाओ, तुम इसी में तन्मय हो जाओ। इस प्रकार से अब वो बोले तो खेलने जाते हैं। इधर देरी होने लगी तो ब्राह्मण बोले, अच्छा बोले नंद जी, अब हम जाए, बहुत देर हो गया, आशीर्वाद दे ही दिया, प्रतिकाल हो गया। उठने लगे तो बजरानी ने पैर पकड़ी, बोले महाराज ऐसे जाएंगे आप? ऐसा नहीं, द्वादशी का पारण ही करना पड़ेगा। ये आपका घर है, आप पधारे बहुत दिनों बाद, तुम जाने नहीं देंगे आपको। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई हमने तो एक नियम ले रखा आजकल, हम तो अपने हाथ से चुने हुए जो कंदमूल होते हैं उन्हीं से पेट भरते, 5 साल से नियम है। तो नंदरानी बोली कि नियम हो चाहे कुछ भी हो, आज तो ये लाला के लिए आप भोजन करना पड़ेगा, हमारे लिए हम तो नियम नहीं छोड़ रहे, पर आप भोजन करके जब प्रसन्न होंगे तो लाला को प्रसन्नता होगी, आशीर्वाद मिलेगा इसको, तो आपको भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मण का अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो कहा भी देखो हमारे लिए पानी वानी शुद्ध होना चाहिए, नहा करके पानी कोई लावे, अब तुम तो रात दिन बच्चों को गोद में रखते, तुम तो अशुद्ध हो, तो नहा धो करके, तो बजनारी नहाई धोई, नहा धो करके और पानी लाई, और बोले थोड़ी कहाँ बनाए, बोले शुद्ध गौशाला है, तो गौशाला में एक बड़ा अच्छा स्थान, वहां गोबर से लीप पोत कर चूल्हा पहले से बना था उसको फिर सुधार दिया, स्वर्ण की कलसी में जल भर के लाई, नवीन पात्र सारे रख दिए और पद्मिनी गाय का दूध खीर बनाया, बोले महाराज खीर बनाओ आज, खीर बने, तो वो रख दिया कटोरी में, कर्पूर रखा, चीनी रखी और घी रखा, इलायची लवंग केसर इत्यादि सब रख दिए, वो और चीजें सब कड़छी वर्छी ला के रख दी, सुगंधित काष्ठ रखा, बोले आप तो चंदन की लकड़ी से रसोई बनाओ, मामूली लकड़ी नहीं, तो चंदन की लकड़ी रख दी। हाँ जो खड़ी होगी, बोले महाराज अब बनाओ, मन का अच्छी बात है। अब उनकी दशा बड़ी विचित्र है, एक ओर तो उनका जो ब्राह्मणत्व है उसकी शुद्धि उन्हें बार बार जा कर ये बोले देखो शुद्ध से बनना, दूसरी तरफ भूख भी लगी मन में, तो तीसरी तरफ रसोई क्या बनावे, मन न होते हो भी बार बार उनका चित्त भी खिंचा जा रहा है, उस बालक को बोले वो कहां से आ गया, खेलने गया था ना, अब वो खेलता हुआ बालक आ जाए तो शुद्ध हो जाए, और ना विग्रह न जा रसोई बनावे कौन, तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो कहा एक काम करो, होगा एक काम तो करो, क्या महाराज, बोले वो बच्चे कहाँ गया, बोला रसोई बनाओ, पीछे बच्चे को ले आऊंगी आपके पास, अरे बोले वो खेलता रहेगा यहीं पर पास ही है, तुम बैठे रहो पास, इन्होंने सोचा कि उसको देखते भी रहेंगे रसोई बनाते रहेंगे। अब वो उनके तो उनको चूल्हा नहीं दिखता, और चूल्हे के स्थान पर उनको तो दिखता है वो मंद मंद मुस्कान मधुर हंसी, और वो हंस रहे हैं, और वो स्वर्ण कलसी और वो स्वर्ण थाल और दुग्ध पात्र हरे दिख रहे हैं, गौशाला के भीत में मानो वो नाच रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ कण कण में नंदे नंदे न भरे, ये सोचने लगते हैं कि क्या पागल तो नहीं हो गया, बूढ़ा आदमी पागल नहीं हो गया। अब वो बड़ी पंचकृपा का ध्यान था जसवा मैया, किसने दिया कि हमारी छाया भी पड़ गई, कहीं ब्राह्मण की सही बिगड़ गई, तो अलग अलग रहे प्रणाम करके दूर से हट गई, रसोई बनाओ। अब ब्राह्मण सभी तो बनाने लगे, अब उनको बार बार दिखे नंदन नंदन, क्या कहने बेचारे, रसोई बनाई, रसोई बनाई। अब वो रसोई बना, अब आदमी को होश नहीं है, पूजा वूजा का होश नहीं है, पर अंतर्वृत्ति जो रही अंतर से, इष्ट मूर्ति मानो बोल उठी, बोले रसोई बनी, इष्ट मूर्ति ने मानो कहा, भूख लग रही है अतिकाल हो गया, इष्ट मूर्ति बोली हाँ, बोले ठीक है, प्रेरणा हुई, तब वो भोजन बना, और एक बड़ा सुंदर ताड़ का पत्ता लेकर उसे ठंडी करने लगे महाराज रसोई वो खीर को। जब शीतल ठीक हो गई तो उस पर तुलसी मंजरी रखी, वस्त्र साई उसको ढका, आंख मुदली, विपिन स्थान में खीर मिश्रित करी परोसी। कृष्ण हृदय ध्यान लगायो, ध्यान लगा कहा महाराज भोग लगाओ। तो यूं भोग लगाने की प्रार्थना करके आंख खोली तो रह गया बात, नैन उघाड़ी विप्र जो देखे खात कन्हैया देखत पायो। आंखें उघाड़ के देखी तो देखा एक कन्हैया खा रहा है खीर मजे में। तनु ने देखा कि मैंने इष्ट देव के लिए जिस आसन की कल्पना की थी उस आसन पर तो नंदन बैठे हैं, पर इधर उधर देखो ना कैसी तिरछी नजर से देखते हुए और उठा के खीर अपना खा रहे हैं। एक बार तो उनके देखते बिजली से दौड़ गई, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। अब नंदन ने खाते अब पंडित जी तो खड़े हो गए। तो ये डरे खाना छोड़ दिया, डरे अब डर करके उठे। उनका उठना था कि कन्व का भाव बदला। कन्व ने सोचा अरे देखो ना कितना ये बालक अच्छा तो लगता है, बहुत प्यारा तो लगता है, पर हमारे इष्टदेव कैसे भोग नष्ट कर दिया सारा का सारा आकर के। बड़ी दशा हुई, जरा रोष सा आ गया। अरे नंदराणी जय जय यशोदा मैया आगे हाथ जोड़े बोले महाराज वो तो सारी व्यवस्था करके गई थी और ये इधर खेल रहे थे, उसको क्या पता कि यहां आ जाएंगे। वो तो वो देखने लगी उधर, तो देखा कृष्ण तो वहां खेलने थे, वहां नहीं मिले। तभी इन्होंने पुकारा और वो दौड़ के गई। कन्व जरा कड़े स्वर में बोले तो ये कांप गई सुधा रानी और भय हो गया कि ब्राह्मण नाराज क्यों हो गए, ये पता थोड़ी था कि ये वो आके खा गया यहां पर। तो रानी के सामने आते ही ग्राणी पूर्ण स्वरों में बोले हे बालाजी यशोदा देख तेरे बेटे ने क्या किया है। अब तो यशोदा डर गई है, पुत्र का प्यार मेरे नीलमणि मेरे लाल चने क्या अनर्थ कर दिया। बलरानी बड़ी व्यथित हो गई कि कहीं ब्राह्मण साप न दे दें। अब ये ब्राह्मण अब कृष्ण ने तो ऐसी फल दृष्टि मानो देने कुछ हुआ ही नहीं, कृष्ण तो है ऐसे जगह फल दृष्टि से मानो कुछ हुआ ही नहीं, ब्राह्मण की ओर देख रहे हैं। जब उनकी दृष्टि गई तो ब्राह्मण का चित्त फिर शांत हुआ, तो बोले नहीं जिसका कोई बात नहीं, बच्चा ही तो उसको क्या दोष है। अरे बच्चा था वो तो दाने दाने पर महोत्साह लगी रहती, हमारे भाग्य में खीर नहीं थी तो कोई बात नहीं, ये तो बेचारा निमित्त बना है और मैं तो असल में आजकल अन्न खाता नहीं है, इस बच्चे ने तो मेरे वर्ष की रक्षा की है, इसको लड़ना वड़ना मत, ये तो मैं गिर रहा था इसने मुझको बचा लिया, कोई बात नहीं मैं आशीर्वाद देता हूं क्या बेटा चिरंजीवी हो सुख समृद्धि बढ़ती रहे, अब जाता हूं। तो नंदरानी ने हाथ जोड़ लिया, बड़े महाराज जाए कैसे, ये बड़ा अर्थ हो जाएगा, ये बच्चे ने बड़ी छोटा बच्चा है, आप तो क्षमाशील हैं क्षमा करेंगे ही, लेकिन खीर महाराज फिर बना लेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि खीर फिर बना ले, फिर गड़बड़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो। बोले महाराज माफ करो भूल हो गई, अब मैं बहुत ख्याल रखूंगी, अब नहीं आने दूंगी और आप बनाओ। ब्राह्मण को भूख से लगी थी, क्या इसकी बात रह जाती है, चलो फिर बना दो। तो ब्राह्मण ने मान लिया, मुझे सुनिए, फिर स्नान किया, फिर स्नान करके बगल की गौशाला होती उसको ठीक किया, फिर जल भर के लाई, फिर सारी सामग्री समझे। अब वो डर रही कि वो खीर लगी हुई नंदन के मुंह पर वो याद आ रही उसको कि कहीं ये फिर के गड़बड़ न हो जाए, तो ब्राह्मण देवता के जो खीर लगा मन में रहा उनकी झांकी उनके मन से भी झांकी गई नहीं। तो अब दूध से पहले इन्होंने उसमें चीनी डाल दी, पंडित जी महाराज ने दूध डाला ही नहीं, चीनी डाल दी। और इस तरह से अस्त व्यस्त हूं, पर कोई बात नहीं, आखिर वो खीर बनी, खीर बनी बड़ी सुंदर, उसमें कपूर की कस्तूरी की गंध आ रही। तो फिर भोग धरा, भोग धर करके और फिर आंख मूंदी, बोले महाराज भोग लगाओ। इधर एक मैया बड़ी शंकित रही, तो गौशाला से बाहर ले गई थी, और बाहर ले जा करके मैया ने सोचा कि आज इसको गोद से उतार रही नहीं है, जब ब्राह्मण देवता कह दें वहां से कि हम खा चुके तब इसको ले जाना, तो तब तक जाऊंगी मैं भी जाऊंगी। तो कृष्णचंद्र जो है इनकी गोद में शांत होकर के बैठे, मोर नाच रहा उसकी ओर देख रहे, फिर आगे बढ़ के धीरे धीरे इनको तो माया रसन तो अलसाने लगे, उवासी आने लगी, जमाई आने लगी, इतने में मैया की गोद में सो गए। गहरी नींद ऐसी देखी, गहरी नींद तो मैया निश्चिंत हो गई कि अब तो वो सो गया। अब मैया की भी रात का जागरण था, एकादशी व्रत किया था ना, रात की जागी हुई तो अब बड़ी सुंदर सुंदर हवा ठंडी ठंडी आ रही थी, मैया की भी आंखें मूंदने लगी। उधर कर्ण महाराज भोग धर करके भगवान का ध्यान कर रहे, और इधर यशोदा मैया को चंद्रा ने घेर लिया। डर पहले था नहीं कि सो गया बच्चा, अब कुछ ही क्षणों का अंतर था, ये पीछे जागे पहले, वो तो उनको तो जागना था ही। वे जाग गए, बस धीरे से जाके ब्राह्मण तो आंख मुझे बैठे इसे ही अंदर घुस गए, और ब्राह्मण ने एक श्वास भगवान के नाम का जाप किया, जाप के जाप करके आचमन कराने के लिए निवेदन दे दिया, आचमन करवाना। आंख खोली तो देखा, अरे ये तो वही बैठा खरा। तो आज ब्राह्मण मुग्ध हो गए, ब्राह्मण को पहले से भी सोगुना माधुर्य दिखाई दिया, कैसे ये अरुणाभ नयन कमल हैं, और ये कैसी सुंदर इनकी पदावली है, कैसा सुंदर कटिदेश है जिसमें मणियों की किंकणी पहने हुए हैं, नूपों से सुशोभित इनकी चरणार विंद हैं, और अंग कांति से मानो सारी गौशाला प्रकाशित हो रही है। नंदन नंदन बैठे अपना मजे में खीर खा रहे, ब्राह्मण मौन रह करके, ब्राह्मण का मन उस सौंदर्य राशि में लग गया, अभी तो गुस्सा उस्सा नहीं आया। यशोदा की आंख खुली, अब अरे वो तो नहीं है, भाग गया कहीं। अब की जो कहीं उसने खीर काली होगी तब तो ब्राह्मण साहब जी भी और मानेगा ही नहीं। इतने नंद बाबा आ गए, नंद बाबा से कहा कि देखो वो पहले तो उसने ये किया था, रखते तो बोले तुमने रखा ही, वो रखते 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 थी, मैं तो देख यहाँ बाहर आके बैठ गई थी, तो वो सो गया, तो मैंने सोचा सो गया, फिर पता नहीं क्यों मेरी आंख लग गई और वो भाग गया, तो ये दौड़े वहां, नंद बाबा भी दौड़े और मैया भी दौड़ी। अब वो जा करके, अब चौथा पहर हो गया था, बेचारे ब्राह्मण दिन भर के भूखे समझे, अब वो ब्राह्मण के पास ही गई, ब्राह्मण देवता बोले तो नहीं, बाकी अब उनको वो तो खा के उठ गए, मैया के बारे तो भी थे कि कहीं कहीं ये मैया और बाबा सीधेंगे, तो उठ के भाग चले, अलग खड़े हो गए जाकर के। और मैया ने बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया। अब ब्राह्मण कि दोनों बातें मन में, गुस्सा भी आ रहा है और उसकी शोभा याद भी आ रही है, ब्राह्मण के मन में शांति आई बोलने में, ये रोने लगी सिसक सिसक करके, रोने लगी कहीं शाप न दे दे, पहले से कहीं अंशा शंका हो गई। तो कर्ण ने देखा कि यशोदा रो रही है, तो बोले नहीं 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 यशोदा, मैं हृदय से आशीर्वाद देता, तेरे पुत्र का मंगल ही मंगल होगा,
तो तेरे मन में बड़ी ग्लानी हो रही है, तो अच्छा ला एक काम कर, थोड़ा सा दही ला दे। तो दही से मैं पैर में खोल दूंगा और चला जाऊंगा। जब ब्राह्मण की जो शांत वाणी सुनी तो नंदरानी की फिर कुछ हिम्मत हुई। बोले महाराज, अब मैं कैसे आपसे निवेदन करूं, फिर बार बार आपको कष्ट होता है, लेकिन ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगे। भोजन किए बिना मेरे घर से अगर आप चले गए तो मुझे अपार दुख होगा। यो कहते कहते उनकी आंखों से फिर धारा बहने लगी। और अब कन्हैया ने इधर उधर आंखें फैलाई तो देखा नंदन खड़ा है, और खड़ा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मैया रो रही है तो वो भी रो रहा है। मैया के दुख से वो दुखी हो रहा है, उसकी आंखों में खेद है, विषाद है। तो जब कन्व ने ये देखा कि श्याम सुंदर नंदन व्याकुल से वो ऐसा दिखाई दिया, तब इनका सारा रोष उतर गया। तो नंदरानी देख दिया कोई बात नहीं, वो बच्चा देख रो रहा है, तेरे रोते देखकर वो भी उदास हो गया, डर गया है बच्चा, तो जा बच्चे को राजी कर और मैं नहीं जाऊंगा, खा के जाऊंगा। अब तो प्रसन्न हो गई मैया, प्रसन्न हो गई। अब उसके बाद फिर तैयारी की, तो बोली कि बाबा अब की तुम इस बालक को लेकर के दूसरे गोपी के घर चले जाऊंगा और किवार बंद कर लूंगी जाकर के, और जितनी ये गौशाला के द्वार सब पर एक एक गोप का पहरा बैठा दूंगी, और स्वयं बलेश्वर नंदराज ये बाहर रहेंगे पहरे पर, जब तक पालन नहीं हो जाएगा तब तक कोई नहीं आ सकेगा, मैं देखती हूँ कैसे बच्चा आता है। तो कन्व ने फिर नंदन की ओर देखा, तो अच्छी बात करो। तीसरी बार तीसरी गौशाला में तैयारी हुई, मुख्य द्वार पर स्वयं ब्रजेश नंद बाबा ये पहरेदार बने, दूसरे तमाम दरवाजों पर यानी खिड़कियों पर भी पहरा बैठा दिया गया। एक एक गोठजुक होकर के बैठ गए ये प्रबंध करके कृष्णचंद्र को लेकर, और नंद रानी उपनंद जी के घर चले गए। उपनंद के घर में जाकर के दरवाजे बंद कर लिए। अब कन्व जी ने फिर खीर बनाई, अर्पण गुरु संपन्न हुई, तो वहां क्या किया कि खेल रहे थे ना, नंद का वो दरवाजा बंद था, मैया गोद में खेल रहे, खेलते खेलते क्या मन में छुड़ा कर हाथ मैया का भागे। अब मैया पीछे पीछे दौड़ी, अब इनको ये बच्चा दौड़े मैया कहां पा सके, वो मोटी बाजी बूढ़ी इतनी आया मैं चाह के दरवाजा खुल गया, अपने आप दरवाजा खुल गया उपनंद का, बाहर आया जनी दौड़ी पीछे से मैया, अरे भगवान रक्षा करो, नारायण बचाओ, नारायण नारायण बचाओ, अरे बजेश्वर कोई इसको रोक ले, बच्चे को रोक ले, ये पुकार लगाती हुई गौशाला के द्वार पर पहुंची, तो देखा कि नंद जी ने नील मणि को पकड़ रखा। तो बजरानी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कोई बात नहीं, समीप जाके दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े रोष से बोली कि अरे तू बड़ा दुष्ट है, सुबह से शाम हो गए तू ब्राह्मण को परेशान ही कर रहा है, पीछे पड़ गया उसके। तो ये अपने ठाकुर जी भोग लगाता है, तू जाके दूध कर देता है। तो नंदन इस बात डर गया और गुस्से में भर कर बोले, बोले मैया कहती क्या है, जननी दोष देत कचमो को बहु विधाय कई धावे, नींद नींद कर जोर मांगले बारी बार बुलावे। बोली मैया तो मुझे को दोष देती है, कितना विधान करके तो वो मेरी पूजा करता है, फिर आंख नींद कर हाथ जोड़ कहता आओ कन्हैया आओ खाओ, पर तू मुझको दोष देती है।